हॉस्पिटल में आरव और छवि की अच्छी खासी बहस हो गई थी, जहां इतने सालों में पहली बार आरव ने अपने दिल का दर्द बाहर निकाला था। गुस्से में आरव ने छवि को उसकी बीमारी के बारे में बताया और फिर वहां से चला गया। तो वहीं छवि को सुलाने के बाद अयान भी खुराना मेंशन पहुंचा। वो जानता था कि आरव कभी आयु के सामने अपने दिल का दर्द जाहिर नहीं करेगा। अयान खुराना मेंशन पहुंचा तब आरव गार्डन में ही था। वो भी आयु को सुलाने के बाद अकेले में बैठा पुरानी बातों को सोच रहा था। अयान जल्दी से आरव के पास गया और उसके गले लग गया। उसने आरव के पीठ को सहलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाई, आप मेरे लिए हर एक मोमेंट में अवेलेबल थे और मैंने कभी पूछा भी नहीं कि आप कैसा फील करते हो। आपके गुस्से और मॉम के लिए नफरत को ही सच माना, जबकि अंदर ही अंदर आप भी प्यार के लिए तड़प रहे थे। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। वो अयान से अलग होकर बोला, मैं उन्हें मिस नहीं करता था, तो ये सब मत बोलो। शुरुआत में बहुत मिस किया, उनके लिए तड़पा, रोया, सब किया, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ सब समझ में आ गया। रही बात अकेला महसूस करने की, तो मैं अकेला नहीं हूँ, तुम हो मेरे साथ, मेरी मिसेस खुराना है और अब तो मेरे बच्चे भी आने वाले हैं, वो भी दो के कॉम्बो में। अयान ने आरव की बात पर हामी भरी। वो इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा भाई, आपको क्या लगता है, रायशा को हमें इस बारे में बताना चाहिए या नहीं? मॉम का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है और अगले हफ्ते तक उनकी सर्जरी हो जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें उसे बता देना चाहिए, वो उसकी मॉम है तो उसे जानने का हक है, आरव ने जवाब दिया। अयान ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर वो मुस्कुराने लगा। वो आरव की तरफ देखकर बोला, भाई, कई बार आप सच में बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हो। कितनी आसानी से अपने मॉम को उनकी बीमारी के बारे में बता दिया कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। ऐसा करता हूँ, रायशा को भी आपके पास भेज देता हूँ ताकि आप सीधे सीधे सब बता सको। हे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मॉम पर मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए मैंने उन्हें बता दिया, वरना मैं भी पहले सोच रहा था कि बात की शुरुआत कहाँ से करेंगे, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अनजाने में उसने फिर से छवि को मॉम बोल दिया था। जब उसे एहसास हुआ तो आरव सख्त लहजे में बोला, मिसेस सिंघानिया को भी बुरा लगा होगा ना? हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था, पर उन्हें बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट वो तो इस बात की खुशी मना रही थी कि आपने उन्हें मॉम बोला। आप उन्हें मॉम कहा करिए, आपके मुँह से अच्छा लगता है, अयान ने जवाब दिया। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अयान वहाँ से चला गया, जबकि आरव वापस अपने रूम में आया। उसने देखा आयु अब तक सोई नहीं थी, वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। आरव को देखते ही उसने जल्दी से अपनी डायरी को साइड रख दिया और फिर आरव की तरफ स्माइल करते हुए देखने लगी। आरव आयु के पास बैठते हुए बोला, कुछ खास लिख रही हो क्या इसमें? मुझे देखते ही छुपा लिया, कहीं तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? आरव आगे बोलता उससे पहले आयु ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा क्यों किसी के साथ अफेयर चलेगा? एक को ही झेलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नोट्स लिख रही थी। मम्मा और बच्चे के बीच में आने का हक तुम्हें नहीं है, आरव ने मुंह बनाकर जवाब दिया। अच्छा जी, अभी से तुमने तो लाइन खींच दी। मुझे पहले पता होता तुम ऐसे भेदभाव करने वाली हो तो मैं कभी तुम्हें बच्चे पैदा करने के लिए हाँ नहीं कहता, आरव ने नाराज होने का दिखावा किया। फिर अचानक ही उसे याद आया जब छवि ने हॉस्पिटल में कहा था कि उसके डैड भी पहली बार बाप बनने के लिए तैयार नहीं थे। आयु अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स डाल रही थी, इसके लिए वो आरव तक से लड़ ली थी। इसलिए आरव ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे सहलाते हुए कहा, पता है, तुम दुनिया की बेस्ट मॉम होने वाली हो। कोशिश करूंगा तुम्हारे लेवल को मैच करके मैं भी हमारे बच्चों को उतना ही प्यार दे सकूं। आरव अपने फादरली इमोशंस शो कर रहा था, जिस पर आयु चुप हो गई। मानसी ने जो भी बताया था उसके हिसाब से बच्चे डिलीवर करते टाइम आयु की जान को खतरा था, जान जाने के चांसेस काफी ज्यादा थे। आयु नहीं जानती थी कि वो जीने वाली भी है या नहीं, इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करना चाहती थी। आयु ने आरव की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हें कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज्यादा अपने बच्चों से करोगे, प्रॉमिस करो मुझे इस बात का, बोलते हुए आयु ने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया, जिस पर आरव ने नामे सिर हिला दिया। आरव आयु की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, ये तो इम्पॉसिबल है मिसेस खुराना, तुमसे ज्यादा प्यार मैं खुद के बच्चों से भी नहीं कर सकता, और इससे तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा। अगर हमारे बच्चे आ भी गए तो मैं तुम्हें, आरव आगे कुछ कहता उससे पहले आयु ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिया और उसे चुप करवाने के लिए किस करने लगी। आरव के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पिछले कई दिनों से आयु उसके बिल्कुल करीब नहीं आ रही थी और अचानक ही वो उसे इतना पैशनेटली किस कर रही थी। आरव का पूरा ध्यान किस करने में था, जबकि आयु के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने मन में कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी के कितने दिन या महीने बाकी हैं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ हर एक लम्हे को स्पेशल बनाना चाहती हूँ। हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ आरव। एक लंबी किस के बाद आरव आयु से अलग हुआ और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, फिलहाल मुझे इस किस की बहुत जोरदार जरूरत थी। वैसे अचानक से तुम इतनी रोमांटिक कैसे हो गई? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मुझे तुम्हारे पास आना अच्छा नहीं लगता हो, आयु आइज रोल करके बोली और फिर आरव के शर्ट के बटन खोलने लगी। आरव हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो उसी लहजे में बोला, कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं कर रखी है? इन बच्चों के चक्कर में तुमने मुझे हक तक नहीं करने दिया और अब तुम मेरे पास आना चाहती हो, ऐसी कंडीशन में? आरव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आयु ने उसके होंठ पर उंगली रखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मानसी से बात कर ली है। अब क्या तुम्हें पूरी रात बातों में ही टाइम वेस्ट करना है आरव खुराना? अरे बिल्कुल नहीं, आरव झट से बोला और फिर जल्दी से अपना शर्ट निकालकर काउच पर फेंक दिया। उसके ऐसा करने पर आयु घूर कर उसकी तरफ देखने लगी। आयु की नजरों को समझते हुए आरव ने सिर हिलाकर कहा, वॉट, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं इस सिचुएशन में भी उस शर्ट को अच्छे से अलमीरा में फोल्ड करके रखूं? आरव ने आयु को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। कुछ ही देर में वो अपनी दुनिया में खोए हुए थे। एक लंबे मुश्किल दिन के बाद जहां आरव को आयु की बाहों में सुकून मिल रहा था, तो वहीं आयु अपनी जिंदगी का हर लम्हा आरव के साथ स्पेशल बनाने में लगी थी। अगली सुबह आरव और आयु की आंख खुली तो वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। कल की रात दोनों की काफी अच्छी बीती थी, इसलिए दोनों देर से उठे थे। अयान रायशा को सब बताना चाहता था, इसलिए उसने आरव को मैसेज किया कि वो रायशा के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाए, लेकिन आरव आयु के साथ अभी तक बेड पर था, इसलिए वो उठा तक नहीं था।
आरव का मोबाइल बज रहा था, फिर भी वो आंख बंद किए हुए आयु को टाइटली होल्ड करके सोया हुआ था। आयु ने आंखें बंद किए हुए ही आरव को उठाते हुए बोली, आरव, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है और इसकी वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है, सो या तो कॉल रिसीव कर दो या फिर इसे बंद कर दो। मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम उठो और खुद ही देखो। वैसे तुम्हें उठने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, तो चुपचाप सोई रहो, आरव ने जवाब दिया और आयु को और भी कसकर पकड़ लिया। आरव की इस हरकत पर आयु ने आंखें खोली और उसे खुद से दूर करके खुद ही खड़ी हो गई। उसने आरव का मोबाइल चेक किया तो उस पर अयान का कॉल आ रहा था। आयु कॉल रिसीव करके बोली, तुम्हें सुबह सुबह ही सारे काम याद आते हैं क्या? ठीक से सोने भी नहीं देते, कब से कॉल किए जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, इसमें इतना चिढ़ने जैसा क्या है? अयान हैरानी से बोला। और सुबह सुबह से तुम्हारा क्या मतलब? दोपहर के 12 बज रहे हैं, तुम दोनों क्या अभी तक बेड पर ही हो? अयान के टाइम बताने पर आयु की नज़र घड़ी पर गई और उसने टाइम देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे पता भी नहीं चला वो इतनी देर तक सोई हुई थी। तभी अयान बोला, देर तक सोए हुए हो मतलब रात को भी देर से सोए थे? तुमने डॉक्टर मानसी से पूछा ना भाई के क्लोज होने से पहले? देखो, कोई भी गलती मत करना जिससे आगे पछताना पड़े। अयान समझ गया था कि आरव और आयु देर तक बेड पर क्यों थे। उसकी बातों से आयु को एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। वो झट से बोली, तुम इतना डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो? मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे सब पता है, मैंने मानसी से बात की थी। तुम्हें आरव से काम है ना, तो उससे ही बात करो, बोलकर आयु ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया और फिर उसे आरव के पास किया। आरव ने बंद आंखों से ही कहा, मुझे उनसे मिलने का कोई मूड नहीं है, इतना अच्छा मूड था सुबह सुबह खराब कर दिया तुमने, खुद ही देख लो ना उन्हें। हाँ देख लूंगा, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप दिन में एक बार उनसे मिलने आएंगे। प्लीज आते टाइम रायशा को हॉस्पिटल ले आना ताकि उसे सब बता सके, और कल की तरह सब कुछ सीधे सीधे मत बोल देना, अयान ने जवाब दिया। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। वो कॉल कट करता उससे पहले अयान चिढ़ते हुए बोला, दोनों हस्बैंड वाइफ एक जैसे हो, पहले तो मैं आप दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करने वाला था, अब चुपचाप दोनों हॉस्पिटल आ जाइएगा, मैं अकेला नहीं देखने वाला, हॉस्पिटल की ड्यूटी के साथ मॉम को संभालना मुश्किल होता है। अपनी बात कहने के बाद अयान ने उनके जवाब का भी इंतजार नहीं किया और कॉल कट कर दिया। अयान के कहने पर आरव को उठना ही पड़ा। वो आयु की तरफ तिरछी निगाहों से देख रहा था, जिसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर रखा था। आयु आरव की निगाहों का मतलब अच्छे से समझ रही थी। उसने ना में सिर हिलाकर सख्त लहजे में कहा, सोचना भी मत, एक किस तो कर ही सकता हूँ, आरव ने बोहें उठाकर कहा। मेरा अभी कुछ करने का मूड नहीं है, हॉस्पिटल जाते टाइम मुझे भी अपने साथ ले चलना, मैं घर पर बोर हो जाऊंगी, आयु ने जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ पलटकर अपने कपड़े पहनने लगी। मजबूरन आरव को उसकी बात माननी ही पड़ी। तैयार होने के बाद वो दोनों नीचे गए। गौरवी जी आरव से नाराज थी, क्योंकि कल वो युवानी के घर जाने वाली थी और आरव रात को देर से घर वापस आया था। हालांकि वो इसका कारण नहीं जानती थी, फिर भी गौरवी जी को आरव पर गुस्सा आ रहा था। आरव को देखते ही गौरवी जी ने सिर हिलाकर गुस्से में कहा, इतना भी क्या जरूरी काम था तुम दोनों का जो देर रात तक घर नहीं आए थे और घर आने के बाद भी मुझसे बात नहीं की? कभी सोचा है कबीर को कैसा लगा होगा जब तुम दोनों रात को उसके साथ नहीं गए थे? वो आरव के साथ साथ आयु को भी डांट रहे थे। गौरवी जी की बातें सुनकर आरव ने उन्हें पकड़कर कहा, कबीर को कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि मैंने कॉल करके उसे ना आने का रीजन पहले ही बता दिया था। वो समझ गया है, तो फिर आप क्यों नाराज हो रही हैं? क्योंकि मुझे कारण नहीं पता है, गौरवी जी ने जवाब दिया, जिस पर आरव चुप हो गया। आरव गौरवी जी को ये बात नहीं बताना चाहता था कि वो कल रात छवि के साथ हॉस्पिटल में था। आयु ने आरव की तरफ देखा तो वो चुप था। फिर उसने आरव का हाथ धीरे से पकड़ा और गौरवी जी की तरफ देखकर कहा, दादी वो हॉस्पिटल में टाइम लग गया, तुम ठीक हो ना? कहीं तुम दोनों आयु की हेल्थ को लेकर कुछ छुपा तो नहीं रहे? गौरवी जी ने जल्दी से पूछा। उन्हें लगा कि वो आयु के चलते हॉस्पिटल में थे। आरव अभी गौरवी जी को कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन आयु ने उनसे छुपाना ठीक भी नहीं समझा। उसने गौरवी जी से कहा, दादी हम मेरे चलते नहीं, छवि सिंघानिया के चलते हॉस्पिटल में थे। छवि सिंघानिया का नाम सुनते ही गौरवी जी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अब उस औरत को क्या हो गया जिसके लिए आरव उससे मिलने तक पहुंच गया? ये भी उसके ड्रामे ही होंगे। आरव ने इशारे से आयु को मना करना चाहा। उसने अपनी फिंगर से आयु के हाथ पर नो लिखा, लेकिन उसने आरव की बात नहीं मानी और गौरवी जी को सब बताते हुए कहा, उन्हें फर्स्ट स्टेज लंग कैंसर है और साथ ही उनके ब्रेन में क्लॉटस बनने लगे हैं। वो काफी बीमार हैं और अयान चाहता है कि आरव उनके साथ रहे, और हमारे आरव ने हाँ कह दी होगी, गौरवी जी गुस्से में बोली। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उस औरत ने जो भी किया वो तुम भूल भी कैसे सकते हो? अरे वो मर भी जाए तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हें रोता और तड़पता छोड़कर गई थी। गौरवी जी आरव से पहले ही नाराज थीं। ऊपर से छवि के पास जाने को बात सुनकर तो वो और ज्यादा नाराज हो गईं। तो वहीं आरव भी आयु की तरफ गुस्से में देख रहा था। वो जानता था कि गौरवी जी का रिएक्शन कुछ ऐसे ही होने वाला था। तभी वो उन्हें कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन आयु ने हर बार की तरह फिर से गड़बड़ कर दी थी।